एक और चीज अगली आयत से पता चलेगी, देखते हैं आयत नंबर 125 को। वैस जाल नल बैता, और जब हमने बनाया घर को, क्या मसाबतल नासी, लोगों के लिए बार बार आने की जगह, दिल उसमें अटके रहते हैं, वह अमना और अमन की जगह यानी टेंशन फ्री जोन। और हुक्म क्या दिया, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम यानी इब्राहिम के खड़ा होने की जगह को मुसल्ला बना लो, यानी वहां पे नमाज अदा करो। वअहदना इला इब्राहिम व इस्माइल, और हमने वादा लिया इब्राहिम और इस्माइल से, मुराद दे के ताकीद की, क्या अंतहिरा, ये कि तुम दोनों बनाओ, साफ करो, क्या बैतियले तौफी नवला किफी नवर रुक का सुजूद, तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। पीछे क्या चल रहा था, फातम्मा हुन्ना, इब्राहिम का चुनाव हुआ, काम क्या मिल रहा है, अल्लाह के घर की सफाई का, और हम ये दे देते हैं किसी और को, हम क्यों करें, हमसे तो अपना घर साफ नहीं होता, हम अल्लाह का घर कैसे साफ करें। आज हमारी कितनी दीनी इदारे और मस्जिदें, क्या इस बात का मुंह बोलता सबूत नहीं है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चुनाव के बाद उनको काम दिया सफाई का, और आज हम मुसलमानों के कल्चर में सफाई करना क्या, मैं झाड़ू उठाऊं, आप बाथरूम भी धोते हैं इधर, आप ये करते हैं, हम तो ये मसीह वाला काम नहीं करते, ऐसा होता कि नहीं। अल्लाह का चुनाव जो है वो याद रखिए बंदे के साथ बड़ा अजीबोगरीब है। हम जिन चीजों को अपने लिए खैर समझ रहे होते हैं ना, असल में दूर रस देखा जाए तो उन चीजों से नुकसान हो रहा होता है। कभी अल्लाह के घरों को साफ करना छोटा काम ना समझिए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि सफाई करना जरा बुरा लगता है, तो मैं कहती हूँ आप अपनी अक्ल से पूछें, गंद डालना बुरी बात है कि साफ करना, अक्ल क्या कहती है इसको, साफ रहना अच्छी बात है ना, तो जो सफाई करता है वो तो वो काम कर रहा है जो कि अक्ल को पसंद आएगा, माहौल को पसंद आएगा। तो जो गंद डालते हैं, आज कल्चर क्या बन गया हमारे दीनी इदारे और दुनियावी इदारों का, अपनी जगह पे बच्चे बैठे होते हैं, टेबलों पे लाइनें लगाते रहते हैं, टेबल सब व्हाइट बोर्ड बन के काले हो जाते हैं, कुछ लोग बैठे ऐसे खुरचते रहते हैं। ऐसी एक जगह थी तो नीचे बैठती थी बच्चियां क्लास के दौरान, तो कारपेट था नीचे अच्छा नया, समझ नहीं आती थी कि ये रोज कारपेट के जो वैक्यूम है उसके अंदर इतना रुआ क्यों होता है। एक दिन जब डीपली उन्होंने चीजें उठाई तो एक खास जगह जो थी उधर से कारपेट के सब रेशे उठे हुए थे, जब आखिरी बात का नतीजा निकला कि जो बच्ची वहां बैठती थी वो यूं करती रहती थी, तो आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बिल्कुल गंजी हो गई। आज कितना को हम इस चीज का ख्याल रखते हैं, उठने से पहले कितने लोग हैं जो देखते हैं कि पीछे क्या सदका जारिया छोड़ के जा रही हैं, किधर के काम है, क्या हो रहा है। हर बंदा इस चीज पे ख्याल रखे। मैंने अभी चंद दिन पहले कहीं सुना है गरीबन स्कॉटलैंड में, कि एक औरत की अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा जाके या दुआ उसकी कब्र पे क्यों मांगी, क्योंकि वो मस्जिद की सफाई करती थी, और सहाबा ने उसको एक आम औरत समझ के रात को दफना दिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दल्लूनी अला कब्रिहा, कि मुझे उसकी कब्र की दलालत हो, मुझे बताओ कि वो कौन है, और गए और वहां जाके अपने दुआ मांगी। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आयत, हमें क्यों ये बात ली, और हमें इसे क्या मिलेगा। हमने इस चीज पे एक अपने लिए एक असूल बनाया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आपको कर देंगे, नहीं चाहते तो नहीं। जैसे हमने परसों के सबक में पढ़ा ना कि मा ननसख मिन आयतिन, कि कुरान के अहकामात तदरीजन उतरे थे, यही असूल हमारा अपनी क्लासेस में, अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे दें तो आने वाला बोझ महसूस करता है। ये वो आयत है जिस पे हमने अपनी पिछली क्लास जहाँ हुई तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने ये बात जब सुनी, उससे पहले तक कोई इस तरह तरतीब नहीं थी, हर एक अपनी खुशी से करता था, लेकिन इसके बाद हमने फिर ये एक्टिविटी शुरू की कि अपनी पूरी क्लास के लिए क्लीनिंग लिस्ट बनाई, और तीन चार लोग मुख्तलिफ है, कारपेट पे वैक्यूम करता है, एक सारे अपनी जगह के हिसाब से। अब तक तो हमारा स्कूल का हॉल ही बस इतना ही सा था जितने में इस वक्त बैठे, इतना पूरा स्कूल होगा, इससे भी छोटा शायद, दो लोग बाथरूम में चले जाते थे, 15 मिनट में हमारा स्कूल साफ होता था, दो वैक्यूम शुरू कर देते थे और 15 से 20 मिनट में हम इस तरह ग्रुप्स की शक्ल में उनकी ड्यूटियां लगाते थे। आप चाहते हैं कि आपकी लगाएं तो बता दीजिएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम आपकी नहीं लगाएंगे। इससे हमारे अंदर आजजी आती है, और मैं बात ना करूं तो मुझे लगता है मैं हक नहीं देती, इसलिए मेरे मुंह पे बात आती है। कभी आप बुरा ना मानिएगा कि अगर मैं किसी जगह का नाम लूं, मैंने जितने शौक और जौक से नॉर्वे के स्टूडेंट जो हैं उनको टॉयलेट साफ करते देखा है, मैंने कभी नहीं देखा। हर फंक्शन पे ड्यूटीज लगती हैं, जैसे अब आपका ईद का प्रोग्राम होने वाला है, पूरे 1-2 घंटे की वर्कशॉप होती है हर प्रोग्राम से पहले, जिसमें एक बड़ा काम होता है ड्यूटीज लगने का। और कुछ बाजियां हमारी हो तो कहते हैं उस टॉयलेट तो मेरा है, वो ना किसी को दीजिएगा ऐसे। और हर दिन खुद 2-3 लोग ऐसे हैं वहां, नई ड्यूटी कुछ नहीं, क्लास के बाद मैं जब देखूं तो उनके हाथ में ट्रैश बैग होता है, और मैं समझ आ रही होती है कि ये खुद गए हैं, इन्होंने खुद सारे टॉयलेट साफ किए। ठीक है वो बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं हमारे, कोई गंदे नहीं है, लेकिन ये भी तो बड़ी बात है ना कि अपना नाम इस तरह जोड़ना। एक हमारी साथी हैं सारे अब तो स्टाफ में, तो वो हमेशा जूतों वाली जगह लेती हैं, गार्डेरो बोलते हैं वहां शायद ना नॉर्वेजियन में, यानी जहाँ जैकेट्स और जूते होते हैं ना, वो कहती है बस ये जगह मुझे दे दे। तो हम हंसते हैं कि देखो तुमने तो वो जगह ले ली कि घुसते ही सबसे पहले उसने वही देखना ना जिसने भी आना है। तो ये कभी भी बड़ी बात ना समझे कि हम बहुत बड़े हो गए और अल्लाह की बात है, पैसा कुछ भी नहीं होता वल्ला ही, ये हम इसलिए नहीं करते वहां के, पैसे नहीं हमारे पास, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आजजी आती है। मैंने खुद यंग बच्चियों को इतना कभी भी शौक से काम करते वैक्यूम फेरते नहीं देखा जितना वो, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह आपको अपनी लगती है। पहले साल वालों ने तो बेहिसाब ही काम किया, वल्लाही बेहिसाब काम किया, और पहले वालों का कोर्स भी रिलैक्स था, 1.5 साल में था, अगले साल जब हमने किया तो 1 साल का किया। तो मैंने इनको कहा कि इस क्लास को ना डालें इन कामों में जो आप लोग करते हैं, क्योंकि मुझे फील हुआ कि अभी इनकी फोकस है। अब जाहिर है जब उनका काम में ध्यान हुआ तो पढ़ाई में कम हो जाता है, कुछ डिमांड भी यही है ना कि एक वक्त में करें। तो जो अभी इस वक्त हमारी माशाल्लाह दूसरा सेशन है, उनको हमने नहीं काम दिए इस तरह के, सफाई के तो दिए इस पे, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम तक, इजाजत नहीं है उनको किचन में जाने की अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ऑफिसेज में वो नहीं जा सकते थे इल्ला ये कि किसी का कोई काम है। लेकिन सिर्फ मैंने कहा चलो इनको आदत डालनी है ना, तो अच्छी बस भाई अपना क्लासरूम साफ कर लें, और ड्यूटियां लग जाती हैं फिर कई दिन बाद आती हैं। अब वो इस वक्त स्टाफ में आ गए हैं, इस वक्त वो नूरुल्लाह नूर बने हैं। तो जो मुझे इन साथियों की खबरें मिलती हैं वो कहते हैं वो इतने खुश हैं इस पे कि अब हमारी ड्यूटियां लगी हैं, अब कैंटीन में खाना भी लाते हैं, जो भी एक रूटीन चलता है। तो कौन सी चीज है जो ये जज्बे पैदा करती है? लिलाहियत। अगर ये चीजें अंदर नहीं आएंगी ना, तो याद रखे पढ़ने के बाद भी ये बुत नहीं टूटेगा, यकीन करें अकड़ी चली जाएगी। और ये कुरान तो हकीकत में हम सबको लेके चलता है, और अगर इस पे अमल नहीं करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आयतें पढ़ पढ़ के आदत हो जाएगी। बहरहाल आयत बड़ी आसान है, इसलिए सिर्फ ये चंद लफ्ज देख लीजिए जिसमें आपको फायदा हो ना हो, लेकिन तहिरा का लफ्ज है ना, ये तहिरान था, तस्निया का ड्यून का सीगा, तुम दोनों बाप और बेटा, ये भी कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, बाप भी और बेटा भी। बईदी मेरा घर, किसका घर? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर साफ करना मिल जाए और क्या चाहिए। फिर ताइफीन, ताइफ की जमा तवाफ करने वाला, आकिफीन एतिकाफ करने वाले लोग, आकिफ की जमा, रुका रा के उनकी जमा, ये जो नमाज में रुकू होता है वो, और सुजूद साजिद की जमा, सजदा करने वाले। तो अल्लाह ताला ने नाम ले लेके बताया, कोई जरूरत थी इन सबके नाम लेने की, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया कि मुसलमानों की मस्जिदें इतनी साफ हों के साजिदून जब सजूद, जब सजदा करने के लिए नीचे कारपेट पे सर रखे, तो कि उनके दिमाग वो भिनक से ख़त्म ही ना हो जाए। यकीन करें बाद जगह कारपेट इतने गंदे होते हैं कि दिल चाहता है कि आगे कोई कपड़ा रख के उस पर सजदा करें। तो यहाँ से नमाजी की ऑनर है, कोई मेहमान आता है तो आप घर साफ करते हैं ना, अल्लाह कहता है ये 5 वक्त मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम हर नमाज से पहले मस्जिदों को साफ कर लिया करो, टॉयलेट्स को साफ कर लिया करो, क्योंकि ये किसी कौम के जिंदा होने की अलामत है कि वो इन चीजों पे। फिर देखिए मस्जिद हराम की तरफ दिल कैसे खींचे, मसाबा सौब से लपेटने का मानी बताया था आपको पीछे भी, यानी अट्रैक्शन पैदा करो अपने दीन की जगहों में, ये मुराद है। मारे बांधे ना लोग बैठे हाय आ गए, अब जुम्मा पढ़ना है या कुरान पढ़ना है, चले इतनी खूबसूरत और साफ जगह हो तुम्हारे दीन की कि जिसका तस्वर नहीं कर सकते लोग। मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत अगर किसी जगह को होना चाहिए तो वो दीन की जगह, मस्जिद से मुराद हर वो जगह है ना जहाँ पे दीन का काम है, ये तो मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद से बढ़ के इस वक्त, क्योंकि यहाँ आप तालीम सीख रहे हैं। देखिए, जमीन, दीवारें, बाहर क्या बैनर पे लिखा है, ये कुछ नहीं होता। असल चीज क्या होती है कि जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उसमें कितनी खैर और कितनी बरकत डालता है। तो आप सब जूतियां कैसे उतारते हैं? कभी आप लोगों ने देखा कि जो जूतियां आप बाहर उतारते हैं, कैसे उतारते हैं? सिर्फ आज से देखिएगा, कहें तो मैं इधर दिखा दूं। शायद आपने कभी नोट किया नहीं कि मैं खुद सही करती हूँ। जिस वक्त मैं आती हूँ, उस वक्त तक जो लोग आए होते हैं केयरलेसली, असल में आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन पता नहीं होता आपको, सोचे कुछ और है, ऊपर जाना है, नीचे, हड़बड़ाए हुए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, हमेशा जिस जगह पे वहां सोचे इस वक्त कहाँ होना चाहिए मुझे, ये चीज कहाँ, वो क्यों। इसी वजह से मेरे घर खराब होते हैं, डिसऑर्गेनाइज, और खराबियां और खराबियां। वत्तखिज़ु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, इस पे थोड़ा सा गौर कर ले। इब्राहिम खड़े हुए थे एक जगह पे, ये कौन सी जगह है? इस पे दो कॉल है, जो मर्जी दिल माने। एक तो कहते हैं ये वो जगह मुकाम इब्राहिम के नाम पे आज भी है, वो पत्थर जिस पे बैतुल्ला की तामीर के दौरान इब्राहिम खड़े होते थे और अल्लाह के हुक्म से वो लिफ्ट बन जाता था। ऊपर दीवारें बढ़ती गई तो वो ऊपर चला जाता था, नीचे आते तो वो नीचे हो जाता। अल्लाह ताला ने इब्राहिम के कदमों की इतनी कदर की कि लोगों से कहा कि वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। ये है अल्लाह की कदरदानी, शाकिरन अलीमा। आप जिन रास्तों से चल के आते हैं ना, अल्लाह ताला उसकी कदर करता है। कैसे करते हैं आप उसको सोच भी नहीं सकते। परसों बड़ा अच्छा एक मंजर हुआ कि जब, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते ही हैं, जब हम आते हैं यहाँ जाते हैं तो हर चीज़ अपनी खूबसूरत और टिकाने पे होती है। तो परसों की बात है, जब सीढ़ियों से हम नीचे उतरे तो जो नीचे के जो शेंगलर्स है ना, वो चल रहे थे, फानूस है। मेरे साथ पता नहीं कौन था, मैंने उनको भी दिखाया। तो सीढ़ियों से उतरे ना, तो जो ऊपर फानूस है ना, आप जाके आज देख लीजिए, फ्लोर पे भी बना हुआ था, और ये जो छोटी छोटी छत के अंदर बत्तियां, ये जमीन पे थी। तो मैंने उसको देखा ना, तो बिल्कुल मेरे जहन में वो हदीस आ गई कि इल्म वाले के रास्ते में फरिश्ते पर भी चाहते हैं। फिर मैंने उसकी मूवी बनाई पास जाके, तो मैंने कहा अल्लाह ताला, दुनिया की जमीन ऐसी लग रही है तो जन्नत कैसी होगी, जिसके बारे में आता है कि लूलू सच्चे मोतियों का उसका फर्श होगा। तो खूबसूरती अच्छी लगती है, अच्छा रखा करें अपने आप को, साफ सुथरा। उससे मुराद ये नहीं कि आप आर्टिफिशियली अपने आप को पहन ओढ़ के सजा के रंग लगा के आए। अंदर मासूमियत, खूबसूरती, ऐसे लगे कि फरिश्ते उतरे हुए। तो ये छोटी छोटी चीजों को लें, फिर देखे अल्लाह ताला कितनी कदर करता है। और आप जिन रास्तों से चल के आते हैं, अल्लाह ताला पता नहीं उस रास्तों पे क्या कुछ बिछाता होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया, वाहिद ना, आहद ले लिया, ताकीद कर दी, हुक्म दे दिया, ये सब कुछ कर लो, आगे देखिए क्या होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, चुनाव हो गया, सफाई हो गई, सब अच्छे अच्छे काम कर लिए, अपने हिस्से की खूब मेहनत कर ली। माशाल्लाह आप में बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि मैंने देखा है कि वो चलते फिरते भागते काम करते हैं, खुद अपनी खुशी से करते हैं। असल काम भी यही होता है, एक वक्त में दो दो काम भी करते हैं, तीन भी करते हैं। याद रखिए, ये तमहीदे हैं इमाम बनने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कौम का सरदार जो है ना, उनका खादिम होता है, असईदुल कौमी खादिमुहुम, जो जितनी खिदमत करेगा ना, वो उतने ऊपर दर्जे पे चला जाएगा। मैं ये चीज देखती हूँ हमारे अपने साथियों में, वो साथी जिनका नाम हमारी नॉर्वे की ऑर्गेनाइजेशन में लीडर है, आपको बताने की जरूरत नहीं, फायदा नहीं होगा। मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा सफाई स्कूल की वो करती हैं, बाकी भी करते हैं, सब करते हैं माशाल्लाह। तो वजह क्या है? चैन ही नहीं पड़ता, ये ना करो वो ना कर लो, मीटिंग में बैठे हुए चैन नहीं आ रहा होता कि आप काम करें, जो कर रहे हैं ठीक है मैं चलती हूँ। खिदमत जीती है, मेरी शक्ल आप कितने दिन देखेंगे? एक दिन अच्छी लगेगी, दूसरे दिन और, तीसरे दिन आप कहेंगे ठीक है बहुत अच्छी है, लेकिन हम रोज नहीं आपकी बात कर सकते, हम नहीं आपकी खिदमत कर सकते, इसलिए हम चंद दिन में थक जाते हैं कई जगहों में। खिदमत जीतेगी, जो किसी की खिदमत करेगा अल्लाह उससे काम लेगा। तो जो अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, उसकी तो पक्की जॉब है, नॉट ले ऑफ। ले ऑफ कौन होता है? जो खिदमत छोड़ देता है, और अल्लाह हम में से किसी के साथ ऐसा ना करे। खैर, अब जरा देखिए कहानी कहाँ पे पहुंच गई। वह इस काला इब्राहिम, और जब इब्राहिम ने कहा, किसको कहा? रब को कहा। क्या कहा? रब्बिज अल हाज बलदना मिनन, ऐ मेरे रब, इस घर को अमन वाला बना दे। किस घर को? मक्का को। इस पे एक हदीस भी है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इब्राहिम ने मक्का के लिए दुआ की थी, तो अल्लाह मैं तुझसे मदीना के लिए दुआ करता हूँ, तू मदीना में वो बरकतें दे दे जो इब्राहिम ने मांगी। क्या मांगा? नंबर एक, आमीनन, अमन वाला बना दे, टेंशन फ्री जोन हो, यहाँ झगड़े ना हो, हड़तालें ना हो, गोलियां ना चलें, लोग मस्जिदों में आए और अपनी इज्जत और अपनी जान को गैर महफूज ना समझे। दुआ करें अल्लाह हमारे पूरे मुल्क को अमन अला कर दे। वर्जो कह लहू मिनसमरात, और रिस्क दे यहाँ रहने वालों को फलों में से। कहाँ रिस्क मांग रहे हैं? फलों का। जहां गैर अजीज जर, इनके लफ्ज आगे आप पढ़ेंगे, सहरा बंजर तिनका नहीं वहां उगता। इब्राहिम क्या दुआएं मांग रहे हैं? मिनस समरात। ये नहीं कहा अल्लाह इनको रूखी सूखी दे दे, बस दुनिया से गुजार के चले जाएं। पहली बात तो यहाँ नोट कीजिए कि पीछे बात हुई औलाद की, तो अब अपनी औलाद के लिए दुनिया मांग रहे हैं। आप अपनी औलाद के लिए दुनिया मांगते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते? मांगे। आप नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा इनके लिए? मसला क्या है हमारा? जब सिर्फ दुनिया मांगते हैं तो लिख ले, औलाद के लिए दुनिया मांगनी है, लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी। और आज अकेले में बैठ के लिख के देखें, हमारे गम, हमारे हम और हमारी दुआएं अक्सरियत की सिर्फ दुनिया तक होती हैं। फिर रवायतन कह देते हैं अल्लाह इनकी आखिरत भी अच्छी कर ले। मांगा करे औलादों के लिए, माँ बाप की दुआएं बहुत लगती हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं। ये नहीं कि दुनिया की तालीम पाते पाते दीन का इल्म छोड़ दें और दुनिया वालों के डर से रब के आगे झुकना छोड़ दें कि हम बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर दूसरी बात देखिए कि इब्राहिम सहरा में खड़े हैं, होप नहीं टूटी। हम होते कहते इब्राहिम जी क्या मांग रहे हैं, सहरा में भला फल उगेंगे? चले आपने मांगना है तो सहरा में कोई ऐसी जड़ी बूटी मांग लें, कोई जंगली बूटी हो जाए, यहां तो हो ही नहीं सकता। ये है बंदे मोमिन का अकीदा। हालात आपकी जिंदगी के बिल्कुल बंजर हैं, कोई नेकी नहीं आप कर पा रहे, कोई खैर नहीं, लेकिन दुआएं बड़ी बड़ी मांगे। आपके बच्चे शायद इस वक्त नमाज भी ना पढ़ते हो, लेकिन आप मांगे कि अल्लाह मेरे बच्चों को मस्जिद हराम का इमाम बना दे, इनको हरम का इमाम बना। अल्लाह से दिल खोल के मांगा करें कि अल्लाह तू अपनी जनाब से दे, और ये तवक्कुल है और उम्मीद है। अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा। अगली बात देखिए, दुआ कब मांग रहे हैं? इतनी नेकियां करके, हाँ? नेकियां करके दुआ मांगी, तो पता क्या चला कि जब दुआ मांगने से पहले नेकी कर ली जाए तो दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। फिर आप ये भी देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी काबिलियत का कोई हवाला नहीं दिया, मैं ये भी तो करता हूं, मैंने ये भी किया, वो भी किया, तेरा घर बनाया, लेकिन कुछ तस्करा नहीं, बस रब से मांग रहे हैं। गोया के बंदे को अपनी किसी नेकी का जोम नहीं होना चाहिए। खैर, अगली बात बड़ी दिलचस्प है। वर्जुक अहलहु मिनस्समराती के बाद मन आमन मिनहुम, इसको ब्रैकेट में कर लें लफ्ज, मन आमन मिनहुम को बिल, जो कोई ईमान लाया इनमें से, किन में से? मेरी नस्लों में से। किस पर? बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पे और रोजे आखिर पे। यहाँ देखिए, ये दीन के दो बुनियादी सतून है। काल व मन कफरा, अल्लाह ताला ने फरमाया और जो कुफर करेगा, फउमत्तियुहु कलीलन, मैं तो उसको भी फायदा दूंगा मगर थोड़ा सा। कलीलन के नीचे लिख लें दुनिया का फायदा। लेकिन थुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको बेबस कर दूंगा अज़ाब नार की तरफ। वबीसल मसीर, और कितना बुरा है वो ठिकाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात की मोहब्बत की कि अल्लाह सिर्फ उनको मक्का में रिस्क देना जो तेरे आगे झुकते हैं। अल्लाह ताला ने बात की अपने बादशाह होने की, अदल की, कहा नहीं मैं काफिरों को भी दूंगा। इस बात की वजह से आपको पता है कि कुफारे मक्का को इतने साल मक्का में रहने का मौका दिया गया कि आखिर फतेह मक्का पे 8 हिजरी के बाद 9 हिजरी को ऐलान आम हो गया कि बरात मिन अल्लाह व रसूल, अब नहीं कोई दाखिल हो सकता। अभी 2 दिन पहले आपने पढ़ा। इब्राहिम ने कहा सिर्फ मुसलमानों को यहाँ खैर मिले, अल्लाह ने कहा कुछ अरसा मैं काफिरों को भी खैर दूंगा। क्यों दिया? ताकि शायद इस माहौल के असर से कुछ सीख लें। इससे क्या पता चलता है कि जब कोई नेकी का काम शुरू होता है ना, तो कुछ लोग तो शुरू शुरू में आ जाते हैं ना, और फिर पलट जाते हैं, या आयत उन पे भी आती है। शुरू में अल्लाह चांस देता है, कमन देख लो सोच लो, और उसके बाद छांटता है। बिल्कुल इसको यूं समझें कि जैसे आमों का सीजन आता है ना, बहुत बुर लगता है दरख्त पे गुच्छों के गुच्छे, और फिर उसके बाद क्या होता है किसी को पता? आंधियां चलती हैं, और उस आंधियों में आधे से ज्यादा बूर झड़ जाता है। फिर क्या होता है, सिर्फ दरख्तों पे वो ही बूर केरियों की शक्ल में आता है जो दरख्त के साथ जुड़ा रहता है। ये हमारे साथ भी होता है, जब कोई नया कोर्स शुरू करें बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते कहते बहुत हैं, वो नहीं आते और बहुत सारे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ना भी पता चले ना, क्योंकि और आते जो रहते हैं तो कम होते दिखते नहीं, लेकिन एक एक करके वो झड़ता जाता है। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो कि हम जिस तपाक से आज पहले पारे के एंड पे पहुंच रहे हैं, 30वें पारे पे हम सिर्फ लोगों के इनविटेशन पे आए और हाथ मलते रह जाए कि हम भी थे कभी इधर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह हिदायत के बाद गुमराह ना करे, बहुत मुश्किल होता है। अंधेरे से रोशनी में आए तो आंखें खुलेंगी, हम अंधेरों में थे, रोशनी में अल्लाह ला रहा है किताब साथ। अब यहाँ रोशनी से बाहर दुनिया में जाएंगे ना, तो अंधेरे ही अंधेरे। फिर जो डिप्रेशन होता है वो तो पागल खाने छोड़ के जाता है, बंदे को खराब हो जाता है। इस तरह इंसान के ऊपर चीजें हमला करती हैं कि अल्लाह की बना। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, कैसे? कभी गए हज या उमरे पे? कौन सा फल है दुनिया का जो वहां ना मिलता हो? आप नॉर्वे, लंदन, अमेरिका से जाएं तो इतना फर्क नहीं महसूस करते, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही है। दुनिया में जिस मुल्क में फल आ रहा होता है वो वहां से एक्सपोर्ट का मामला कर लेते हैं। पाकिस्तान से जब आप आते हैं और एक ही दुकान पे आम भी देख रहे हैं और साथ ही आप उसमें माल्टे भी देखते हैं, तो फिर याद आता है कि ये अल्लाह ताला की रहमत से। फिर आप देखिए, हजरत इब्राहिम ने यहाँ डर और खौफ से भी पनाह मांगी, अमन वाला कर दे। फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ, सूरत कुरैश की आयत 3-4 में आता है। तो क्या पता चला कि जब तक अमन नहीं होगा मुल्कों में, शहरों में, तो दीन का काम भी अच्छी तरह नहीं होगा। हत्ता कि आप सूरत फील में पढ़ते हैं कि जब अब्रहा से एक लश्कर आया तो अल्लाह ने उस घर की हिफाजत कर ली। ये सब इब्राहिम की दुआओं से था। और उसके बाद आप देखिए कि फिर अगली आयत जिसमें अल्लाह ताला इब्राहिम को मजीद खूबसूरत काम करता हुआ दिखा रहे हैं। अभी तस्करा किया है, अब विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे बात करते हुए आप कभी स्क्रीन चलाते थे ना हम लोग, कि अब इसको देखें, अब आप बिल्कुल स्क्रीन पे देखें कि क्या वो इज जरफ़ इब्राहिम उल कवायदा, और जब उठा रहे थे इब्राहिम बुनियादों को, मतलब ये कि बुनियाद के ऊपर दीवारें खड़ी कर रहे थे। लफ्ज़ी वज़ाहत में आप देख चुके हैं कवायद को, कायदा, बुनियादें। ये कौन सी बुनियादें थी, नोट कीजिएगा आप इस पे कुछ चीजें। बस लोग हमारे अंदर, मैं खुद ऐसे ही थी, कुरान से जब नहीं पढ़ा तो मुझे लगता था कि खाना काबा बैतुल्ला इब्राहिम ने बनाया, यही मारूफ है ना। हालांकि बैतुल्ला सिर्फ इब्राहिम ने नहीं बनाया, रिवायात में आता है कि सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया। जब ये दुनिया बनी तो बैतुल्ला उस वक्त बन गया, फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो ऊपर से दीवारें सब बह गईं, क्योंकि वो आम पानी नहीं था, बहुत बहाने वाला पानी था। बुनियादें रह गई, वक्त के साथ लोगों को ये तक याद ना रहा कि बैतुल्ला कहा था। अब ये वक्त आ गया कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम से कहा वज़रफ़ इब्राहिम उल कवायदा, अल्लाह ताला ने वही के जरिए इब्राहिम को बता दिया था कि कौन सी जगह थी जहां था। तो आप कह सकते हैं कि खाना काबा की बुनियादें तो फरिश्तों के हाथ से डली, लेकिन ये अब तक 10 दफा बन चुका है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे जाके सूरह आले इमरान में इंशाल्लाह लिखा दूंगी कि किस दौर में किस तरह से बना, और आज आप देखिए कि उसके अंदर कितना कुछ है। वही जरफ़ इब्राहिम अल कवायद मिन अल बैत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ड्यूटी मिल रही है, असाइन किया जा रहा है, क्या कि मेरा घर बनाओ। नोट कीजिए, अल्लाह अपने घर उनसे बनवाता है जो खालिस होते हैं। जो वाकई कुछ बनाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फल मांगे, चीजें मांगी, अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत दे दी। इससे भी एक मानी पता चलता है। और वो क्या, आप अल्लाह के दीन के कामों में लग जाएं, अल्लाह आपके कामों में लग जाता है। मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बनता है अल्लाह उसका बन जाता है। यही बात यहाँ दिखती है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरह से अपने कामों के लिए चुना और इब्राहिम वो घर बना रहे। तस्वुर में आ रहे पाकिस्तान में कोई घर बनता देखना, मिस्त्री और मजदूर। बाप कौन है? मिस्त्री अपनी लफ्जों में, और मासूम सा इस्माइल मजदूर है। क्या मंजर होगा कि वो ईंटें उठा उठा के दे रहे हैं और बाप उसको अल्लाह के घर में लगा रहे हैं। क्या आज मैं और आप ये दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह आज के दौर में दीन की बुनियादें हमें और हमारी औलादों को बना दे? आज फिर वही तूफान नूह है जिसमें नस्लें बह रही हैं, जिसके अंदर इतनी तबाहियां इतनी हलाकते हैं कि एक बंदा उसका तस्वुर नहीं कर सकता। ना पता हो तो खुश रहेंगे, पता लग जाए तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। और ये वो घर जिसमें अल्लाह ताला ने उस वक्त जो हालात बनाए, आज तक दुनिया इसकी गवाह है कि इब्राहिम की दुआएं कैसे पूरी होती हैं। कहते हैं कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे कबूल कर। ये क्या बात हुई, काम कर रहे हैं, शुक्र नहीं काम कर रहे हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना आजजी है, क्योंकि इम्तिहान में डाले जाने के बाद काम मिला। काम मिल गया तो अब इस पे कोई मान नहीं, कोई फिक्र नहीं कि ये काम हम कर रहे हैं अब ये करेंगे। फिक्र क्या था कि इसको कबूल कर। क्यों? इसलिए कि असल चीज काबिलियत नहीं है, कबूलियत है। हम दुनिया में बीसियों बार ये चीज देखते हैं कि आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, अगला बंदा आपको कबूल ही ना करे। किस काम के? कितनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, अच्छी, साफ सुथरे, बड़ी शुस्ता, शौहर कबूल ही नहीं करते। सारी जिंदगी बीवी होते हुए बेवाओं वाली जिंदगी बसर कर जाती है, कबूल नहीं किया। अच्छा, कबूल कौन कब करता है? जब आपका दिल उससे खुश होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपके अपने जहन के मुताबिक दे देती हूँ। आप खाना पकाते हैं, चिकन रोस्ट, कुछ भी, बड़ा सा नाम ले ले। आपकी एक ऐसी रिश्तेदार कि जिसके साथ दिल नहीं खुश, बस ऐसे ही ऊपर से बनी हुई है कोई बात, अपनी मेड को कहते हैं जाओ उसको दे। अब वो भी कोई इतनी गई गुजरी तो नहीं, खाना तो उसके पास भी बहुत है। उसने देखा कि आप उसको मिलती हैं तो बात नहीं करती, चिकन बना के भेज दी, तो वो क्या कहती है कि उनको को कि ये ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। उसे को जब खुद मेरे से बात करोगी तो फिर देना। नाराजगी होती है ना तो मुर्गी भी नहीं कबूल होती। और अगर दिल मिले हो ना तो आप एक छोटी सी बात करते हैं फोन पे, दाल चावल बनाया है, कढ़ी चावल है, अच्छा भेजो, हाँ हाँ भेजो, फिर आप भेजते हैं, फिर वो खाते हैं, फिर तारीफें करते हैं। क्यों? ताल्लुक था। कुर्बानियां करने लगे ना हम सब भी कुछ दिन के बाद। आज समझ लें, कल इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे कुछ चीजें। बड़े बड़े बकरे छतरे लेने से पहले काबिलियत बढ़ाते हैं ना, बड़ी चीज पहले ये देखिए कि कोई अमलों में ऐसा अमल तो नहीं कि कबूलियत से ही रोक दे। हमारे अमाल में बहुत सारे अमल हैं जो कबूलियत से रोकते हैं। मुझे याद है पिछले रमज़ान, जो उससे पिछले रमज़ान से पहले के लेक्चर्स में मैंने रमज़ान के तवस्सुत से ये लेक्चर दिया था, अगर एडमिन्स ढूंढेंगे तो उनको मिल जाएगा, कि इतनी जो लंबी मेहनत करने लगे हैं रमज़ान में तो पहले देखें कि कोई ऐसा अमल तो नहीं जिसकी वजह से कबूलियत ख़त्म हुई हो। तो कबूलियत की फिक्र करें, काबिलियत को छोड़ दें। नंबर जितने भी आते हैं छोड़ दें, याद होता है तर्जमा के नहीं, छोड़ दें, बस दुआ करें कि अल्लाह कबूल कर ले कि इस लफ्ज को इतनी दफा पढ़ा था। इन्नक अंतस समीउल अलीम, तू खूब सुनता है और तू खूब जानता है। क्या सुनता है? मेरी दुआओं को सुनता है। और जानता क्या है कि कौन किस नीयत से काम कर रहा है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, अगली खूबसूरत दुआ, ए हमारे रब हमें दोनों का अपना फरमा बरदार बना। बाप ने अपने लिए भी मांगी और बेटे के लिए। यहाँ से पता चला कि सिर्फ औलाद के लिए दुआएं नहीं करनी, उनको दीन के कामों में अपना मुआविन रखें। क्या काम कराएं मैं और आप अपने बच्चों से? उनसे अपने स्कूल के काम कराया करें। बेटा जरा मेरा पेपर प्रिंट कर दो, बेटे ये दुआ है जरा प्रिंट करके उधर लगा दो। हम तो मेहमानों की तरह उनके हाथ में दीन भी पकड़ाते हैं कि ये पढ़ लो सही। चलो मेरा बेटा जाओ, मैं कहती हूँ आप सबके बच्चे जितने भी हैं यंगस्टर बेटे बेटियों का कोई फर्क नहीं रहा, सबको कंप्यूटर आता है। आप आज एक नियत कर लें कि आप अगर अपना सदका जारिया बनाने के लिए अपने बच्चों को दवा के लिए सीडी जो बांटते हैं ना हम लोग उस पे लगा दें, सब कुछ वेब पे डाला हुआ है, जिसको हेल्प चाहिए पूछना है करना है कर दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है, उनसे सीडीज बनवाएं। और माशाल्लाह हमारे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनके बच्चे बेटे बेटियां बहुत सारी बना देते हैं, आप उस पर अच्छी राइटिंग में लिख दें, उनका हिस्सा डलवाएं। आज आप अपने हाथ से उनसे नेकी नहीं कराएंगे, मुझे तो गम क्या है कि कल उन गरीबों को पता ही नहीं कि वो अपने नस्लों से क्या कराएं, अम्मा उनको दे देती थी, ये अपने बच्चों को दे देंगे। तो नेकी में औलाद को शामिल किया, और अब दुआ किसकी कही, दोनों के मुस्लिम बनने की, और साथ ही वह मिन जुर्रियतिना, ये कौन है, पोते नवासे, तीसरी जनरेशन के लिए दुआ की, क्या बनाना, उम्मत मुस्लिमत अल्लग, इनको मुसलमान उम्मत बनाना, वारी ना मना सिकाना, और हमें अपने तरीका इबादत भी सिखा। ये क्या बात हुई, घर खुद बना लिया तो इबादत के तरीके भी बना लेते, नहीं तू सिखा। यहां से एक बात बड़ी अहम है अकीदे की, सिर्फ इशारा करूंगी आगे चलेंगे, और वो क्या है कि इबादत इजाद नहीं की जा सकती, इबादत मानी जाती है जो अल्लाह के वो करनी है। अगर आज के तौर पे आप लेके देखे तो इब्राहिम अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह का घर बनाया, सफाई पे लग गए, कुछ कर ले, घर जो बना लिया तो इबादत के तरीके बना लेते। तवाफ हम यूं करते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर देते, 7 चक्रों की बजाय 10 चक्कर डाल देते, नहीं किया। इब्राहिम को क्यों नहीं ख्याल आया कर लूं, और क्या चुने हुए नहीं थे, नीयत कितनी अच्छी थी। आज हम लोगों को जब मुख्तलिफ बिदात में देखते हैं जो दीन के नाम पे वो करते हैं, तो उन्हें कहा जाए कि क्योंकि, तो कहते क्या हर्ज है, गुना तो नहीं है। तो यहां बस ये नोट करें कि हमारा काम शरीयत बनाना नहीं है, शरीयत को मानना है, क्योंकि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वतुब अलैना। ये क्या बात है, कोई गुना करके उठे कि कह रहे हैं अब तौबा हमारी कबूल कर, नहीं, जिस तरह इबादत करनी चाहिए थी वैसी नहीं कर सके। और यही अंदाज हमें नमाजों के बाद सिखाया गया, अल्लाह के नबी नमाज से सलाम फेर के अल्लाह अकबर के बाद अस्तग़फिरुल्लाह 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 कहते थे, तो पता क्या चला, बड़े से बड़ी नेकी भी करते हुए तौबा करते हुए उठा करें। हम में से यहाँ से कोई फख्र के साथ ना उठे, बहुत बड़ा काम करके उठे, दिल में रोता हुआ उठे कि पता नहीं इसका हक भी दिया कि नहीं। इन्नक अंत तौबा रहीम, तू तौबा कबूल करने वाला है और बहुत मेहरबान है, यदि तेरा रहम है कि नेकी का मौका मिलता है, और तेरा तवाब होना है कि हमारे गुनाह माफ होते हैं। और आखिरी दुआ जो आज के सबक की आखिरी आयत है, रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, ए हमारे रब इसमें अब अपना रसूल भी भेज। कहाँ से भेज, मिनहुम इन्हीं में से भेज, हम जुबान हम कल्चर, ताकि इनके दुख सुख मसले समझताओ कोऑर्डिनेशन हो। करेगा क्या वो उस्ताद, यतलू अलैहिम आयाती का, तेरी आयतों की इन पर तिलावत करेगा, यानी कुरान पढ़ के सुनाएगा, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इनको किताब की तालीम देगा। कैसे, अरबों में कुरान नाजिल हो रहा था ना, तो तालीम की क्या जरूरत थी, अरबी तो आती थी। यहां से पता चलता है कि सिर्फ अरबी आने से कुरान नहीं आता, कुरान अरबों को भी समझना पड़ता है, तफसीर, जैसे हमें उर्दू की बहुत सारी बातें नहीं समझ आती, कुरान भी नहीं समझ आता अरबों को जब तक उनको सिखाए ना कोई। और वल हिकमता, और हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक तू ही ग़ालिब हिकमत वाला है। पहले क्या किया इब्राहिम ने, अल्लाह से घर बनवाने की इजाज़त मांगी, कहा बना लो, बना लिया, फिर कहा अरीना मनासिकना, ये के सले बस तरीका कार, अब क्या मांग रहे हैं, रसूल यानी उस्ताद। क्या पता चला कि तालीम के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जगह, मेथडोलॉजी और टीचर। ये क्यों नहीं कह दिया कि किताब नाजिल कर दे, सबके घरों में भेज देते हैं उसके नुस्खे। याद रखिए, इन्फॉर्मेशन किताबों से मिल जाती हैं, तफसीरों से भी मिल जाती हैं, इल्म के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। और अल्लमा युअल्लिमु तालीम किसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देना, उस्ताद इस तरह से इल्म थोड़ा थोड़ा करके देते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता, और वो इल्म इंसान के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ इब्राहिम की पूरी हुई, 3 दफा ये आयत हम कुरान में पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले सूरह आल इमरान में आएगी, फिर सूरह सफ में भी आएगी, और आप एक एक लफ्ज के अंदर देखेंगे कितने मानी छिपे हुए हैं। लेकिन यहाँ से एक दीनी इदारे का सिलेबस पता चल गया कि वहां कुरान को पढ़ना भी सिखाना चाहिए, उसकी तालीम यानी तर्जमा और तफसीर भी होनी चाहिए। आप नोट कर लें, एक एक चीज के नीचे ही लिख लें। यत्लु अलैहिम आयाती का क्या है? तजवीद, यही है ना। युअल्लिमुहुमुल किताब क्या है? तफसीर और तर्जमा, ठीक है। हिक्मा क्या है? हदीस। नंबर एक, इमाम शाफी कहते हैं किताब के बाद जब हिकमत का लफ्ज आए तो इससे मुराद सुन्नत है, और हिकमत से मुराद कुरान की एप्लीकेशन है। इसको अपने ऊपर अब अमली तौर पे कैसे लाना है? ये युज़कीहिम क्या है? तज़किया, तरबियत। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत मौके दिए हैं कुरान पढ़ने सीखने के। तजवीद बहुत फोकस, तर्जमा लफ्जी नहीं तो बा मुहावरा काफी ज्यादा, तफसीर डेप्थ में नहीं तो गुजारे लायक हो गई। कमी किस चीज की है? हिकमत और तज़किया की। आज दीन के नाम पे जहां कुरान पढ़ाया जाता है इल्ला माशाल्लाह, अमूमी रुझान क्या है कि लफ्जी वजाहतों पे यानी इस किस्म की बातें जिसमें इल्मी बातें वो बहुत की जाती हैं, सुनने वालों का तज़किया नहीं किया जाता। 15 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं, यकीन करें कि इतना जो वक्त ऊपर जाता है ना, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे गिल्ट भी होता है कि टाइम टेबल ख़राब होता है, सब है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये शुरू की 2 बातें तो हो गई, तालीम, हिकमत भी। हदीसें आपके सामने शेयर कर देती हूँ कभी कभी पढ़ाते हुए कुछ बातें, चलिए हिकमत के अंदर कुछ बातें आपको ज़िंदगी के वाक़यात की सुना दी जाती हैं। ये तज़किया कब होगा? जब कतरा कतरा दिल में आता है। तरबियत और तज़किये के बगैर कुरान फायदा नहीं देता। और ये भी नोट कर लें कि तज़किया पहली दफ़ा कुरान पढ़ने से ही हो जाता है। आज माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं उनका तज़किया बहुत हुआ हुआ है। कुरान पढ़ने के बाद दिल दुनिया से उठ जाता है, तज़किया हो गया, आखरत पे नजरें हैं, लेकिन कमी तरबियत की है। कैसे बैठना है, क्या माहौल है, क्या करना है, इसके बगैर फिर वो नतायज नहीं दिखते जो के मतलूब हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला हम सबको इससे पूरी खैर लेने वाला बना दे। बस दफ़ा सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हम पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ से पीछे हो जाते हैं। इस दफ़ा तो मेरा ये भी दिल करता है कि मैं आप सबको लफ्जी तर्जमा यही याद कराऊं। मैंने सोचा था जब ये तैयारी थी इस कोर्स की, प्लानिंग्स की मेरे जहन में, तो मैंने सोचा था कि 15 को मिनट ज़रूर रखेंगे, हम सब याद करेंगे। हाफिज़ नहीं जैसे बच्चे पढ़ते हैं झूम झूम के, आवाज़ें आई दरों दीवार से कि ये सारे लफ्जी तर्जमा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर कमी में टाइम किया। और ये जितना हम वर्क को स्क्वीज़ कर रहे हैं ना, यकीन करें उसकी वजह यह है कि सिलेबस लंबा है, 6 घंटे की क्लास अब 4 घंटे में कर रहे हैं। इन दिनों में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चल रहे हैं, जिसको आप जिलहज के कहते हैं, ये दुआ मांगे कि अल्लाह एक तो हमारे वक्त में बरकत डाल दे, या फिर आप अपने दिल को खुलाब करें। ये दुआ मांग के आए कि हम कम अज़ कम अगर दिन नहीं तो वक्त तो थोड़ा सा बढ़ा सके, ताकि ये गिल्ट जो होता है, और प्लस ये कि फिर दूसरे सब्जेक्ट पीछे होते हैं, हालांकि असल सब्जेक्ट कुरान ही है, बाकी चीज़ें तो टूल्स हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपके लिए ज़्यादा कर दे। तो ये था आज का सबक, मुझे तो यही लगता है कि सबक का खुलासा, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है।
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم